لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. درود بجي محمد وعلى محمد. حضرت محترم مرحوم جناب سید یاور عباس رضوی ابن سید آفتاب حسین رضوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے لواحقین کی جانب سے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا. آپ مومنین اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس فرش عزا پر تشریف لائے اس یقین اور امید کے ساتھ کہ خداوند عالم اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے اور اس سے بہترین اجر ان مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے. خدا کا اللہ کے احسان کہ اس نے ہمیں ایسے مکتب سے وابستہ کر دیا کہ جہاں مرنے کے بعد بھی حسن عمل کے اندراج کی گنجائش باقی رہتی ہے. یقیناً یہ محمد علی محمد علیہ السلام کی برکت کا ایک نتیجہ ہے. خداوند عالم نے ہمیں جس دامن سے وابستہ کیا یہ دامن ہماری دنیا و آخرت کی سعادت کا ضامن ہے، بشرط یہ کہ ہم اس دامن سے جو وابستگی رکھنے کا حق ہے اس طرح سے وابستگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. عزیزو یقیناً انسان اس دنیا میں جو آیا خداوند عالم نے اس دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا. جن کی خاطر اس کائنات کو خداوند عالم نے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات میں کچھ بھی خلق نہ کرتا. یہ وہی حقیقت ہے جس کو آپ نے مجلس کی ابتدا میں حدیث قصہ میں یقیناً سماعت فرمایا ہوگا. جب فرشتوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے پروردگار جن کی خاطر تو نے اس کائنات کو خلق کیا تو خداوند عالم کی جانب سے جواب آیا یہ پنجتن پاک ہیں، ان میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، اور یہ نہ ہوتے تو اس کائنات میں کچھ بھی خلق نہ ہوتا. تو بس جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، لیکن مشیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ظاہری زندگی ہے بہرحال وہ ان ہستیوں کی بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اختتام تک پہنچی. اسی لیے کہا گیا کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت انسان کو یعنی مجھے اور آپ کو، موت کا تذکرہ کسی اجنبی کا نہیں ہے، موت کا تذکرہ میرا اور آپ کا تذکرہ ہے. موت کی منزل میری اور آپ کی منزل ہے. موت ایسا نہیں کہ خداوند عالم خلق کچھ کرنے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھوں سے خلق کچھ اور ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے. خداوند عالم قدرت والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سورہ ملک کی ابتدائی آیات کہ باب برکت ہے وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک کہ جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے, سب کچھ اس کے اختیار میں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, کوئی بھی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اور پھر اسی خداوند عالم نے اپنی قدرت کے ساتھ خلق الموت, الذی خلق الموت والحیات, اسی نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ موت خداوند عالم کی مخلوق ہے. خلق الموت والحیات, کیوں پروردگار عالم تو نے موت اور حیات کو خلق کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ تم انسانوں کی آزمائش ہو سکے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اس کا مطلب ہے کہ بس موت ایک بدنما چیز نہیں ہے, موت کوئی خوف زدہ ہونے والی شے نہیں ہے, مخصوصا مکتب اہل بیت علیہ السلام کے اندر. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, امام نے شب عاشور حجت تمام کی ہیں, یقیناً امام جانتے تھے کہ ان کے ساتھ رہنے والے تمام افراد جو ان کے اصحاب ہیں سب باوفا ہیں. امام جانتے تھے کہ جو اس لمحے تک رکا ہے وہ یقیناً کسی لالچ میں نہیں رکا, اس کے اندر ایک جذبہ ہے, ایمان ہے, اس کی حرارت ہے, یقیناً یہ اپنے خداوند عالم سے کیے گئے عہد کی بنیاد پر یہاں باقی بچا ہے. لیکن اس کے باوجود امام حسین نے حجت تمام کی, جانے کی اجازت دی, آپ نے وہ سماعت فرمایا, چونکہ موضوع سخن وہ نہیں ہے اس لیے اس کی طرف تفصیل میں نہیں جاتے. انکار کیے جانے سے لوگوں نے, کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھا, امام نے چراغ بجھا دیا کہ اگر کسی نے شرما حضوری میں جانے سے انکار کیا ہو, یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں حجت لوگوں کے اوپر تمام ہو رہی ہے, بعد والوں کے لیے, کہ بعد میں کوئی ایسا نہ سوچے کہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے شرما حضوری میں لوگ بیٹھے رہ گئے. امام نے چراغ بجھا کر ہم لوگوں کے لیے حجت تمام کی کہ میرے اصحاب وہ نہیں ہیں جو شرما حضوری میں میرا ساتھ دے رہے تھے, میرے اصحاب باوفا ہیں. وہ اگلے جملے امام حسین کے, چراغ بجھایا کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا. اس کے بعد امام حسین نے وہ جملے ارشاد فرمایا, خطبہ ہے کہ میں نے جو اصحاب پائے ہیں ایسے اصحاب خداوند عالم نے نہ میرے نانا کو دی نہ میرے بابا کو نصیب ہوئے. امام حسین کیا خطبہ ہی. اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں کہ اے میرے اصحاب باوفا, اب جب تم تیار ہو یہاں رہنے پر, صبح قطعی حتمی موت ہے, اب جب تم اس میں تیار ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں موت کی حقیقت کیا ہے. فَمَا الْمَوْتُ إِلَّا قَنْطِرَةٌ, بس یہ جان لو کہ موت ایک پل کی مانند ہے. موت آئے گی جیسے ایک پل پر انسان سوار ہوتا ہے, ایک جانب سے سوار ہوتا ہے, اس پر سفر طے کرتے ہوئے, کچھ فاصلہ طے کرتے ہوئے پل کے دوسری طرف اتر جاتا ہے. جس جگہ سے چڑھتا ہے پل پر وہاں نظر نہیں آتا, لیکن یہ فنا نہیں ہوتا, مٹتا نہیں, باقی رہتا ہے, یہ پل سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے. موت پہ عین ہی یہ کام کرتی ہے. موت آنے کے بعد تمہیں اس دنیا سے فنا کی وادیوں میں لے کے نہیں جاتی, بلکہ جس جگہ کو ہمیشہ کے لیے دوام حاصل ہے موت تمہیں ادھر منتقل کرتی ہے. بس مطلب اہل بیت علیہ السلام میں موت ایک ایسی حقیقت ہے, جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسی مقصد کی خاطر آیا. خدا نے اس موت و حیات کا چکر کیوں چلایا؟ میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے قرآن کی آیت, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ جانچا جا سکے تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے. درود پڑھے محمد والے. جس کا مطلب عزیزوں یہ ہوا کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو آئیں خداوند عالم کی مشیت سے اور ایک محدود زندگی لے کر آئیں. ہم اور آپ آج جناب یاور عباس رضوی صاحب کی سالِ ثواب کے لیے جمع ہیں, انشاءاللہ خداوند عالم ان کو اس محفل سے بہترین اجر عنایت فرمائے. یہ سلسلہ ہے کہ جس کے اندر انسان درجات حاصل کر سکتا ہے. خدا کرے کہ انشاءاللہ یہاں بیٹھنے والے تمام افراد کے جتنے مرحومین ہیں خدا ان سب کی برزخ کے منازل کو آسان فرمائے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. لیکن بہرحال انسانی فطرت کے اندر خداوند عالم نے رشتوں کی محبت بھی رکھی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ موت ایک حقیقت ہے, ایک اٹل حقیقت ہے, اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو تلقین کا عمل ہماری آنکھوں کے سامنے دہرایا جاتا ہے, جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے قبر میں اس کو لٹا کر تلقین پڑھائی جاتی ہے, وہاں پر بھی یہ جملہ ہے, اے جانے والے اس بات کو سن اور سمجھ کہ ان الموت حق, موت تو حق ہے. یہاں پر توجہ کیجیے گا, جانے والا تو اس حقیقت کو پہلے ہی پا چکا ہے, اس کی آنکھیں بند ہوئیں, ملک الموت آیا جو کسی نے نہیں دیکھا, اگر اس کے اطراف میں لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ عالم نظام تھا, ملک الموت کا فرشتہ آ گیا, ملک الموت آ گیا,
किसी ने नहीं देखा, उसने तो देख लिया, और देखने के बाद मलकुल मौत ने उसकी रूह को कब्ज भी कर लिया, वो तो पहले ही इस हकीकत तक पहुंच चुका है। फिर तलकीन में उसके शानों को हिला कर क्यों कहा जाता है कि इस बात को जान ले कि अन्नल मौत हक्कुन वल बासा हक्कुन वन नुशूरा हक्कुन, कहा यह जाता है कि तलकीन हकीकत में उस जाने वाले से ज्यादा जो खड़े हुए हैं उनके लिए, हकीकत में यह उनके लिए है कि देखो एक वक्त तुम पर भी आने वाला है, आज ये तुम्हारा अजीज जो चंद लम्हे पहले चंद साआतें पहले तुम्हारे दरमियान था, इसको भी नहीं मालूम था कि इसने जाना है, कब जाना है इसका वक्त नहीं मालूम था। अजल इलाही पैमाना लबरेज हुआ, मशीयत इलाही का तकाजा हुआ, खुदा वंदे आलम ने मलकुल मौत को भेज दिया, उसकी रूह को कब्ज कर लिया गया। बस इस बात को तुम भी समझ लो कि जो मौत आई है फकत इस पर नहीं आई है, यह मौत तुम्हारी तरफ भी आएगी। तशी जनाजा में बाज लोग शरीक हुए, मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के जमाने में और इससे हमें भी यकीनन अपने लिए कुछ सीखना चाहिए, हम और आप भी तशी जनाजा में शरीक होते हैं। अजीज इस बात को समझ लीजिएगा कि तशी जनाजा यानी मुशायत करना, जनाजे के साथ चलना, इसका बहुत ज्यादा अजर बयान किया गया है। अगर कोई इंसान वक्त निकाल कर किसी मोमिन या मोमिना के जनाजे में शरीक हो तो जितने जितने कदम वो उठाता है और उस कदम के अंदर जिक्र खुदा करता है, इस तमाम कदमों के उठाने का अजर उस मरहूम को भी मिलता है और इसकी बख्शिश का सबब बनता है, साथ साथ जो कदम उठाने वाला होता है खुदा उसके लिए रहमत के दरवाजों को खोलता है। लेकिन इसके लिए जाहिर हर चीज के आदाब है, हर चीज जो इबादत है अदब रखती है, नमाज इबादत है अदब रखती है, रोजा इबादत है अदब रखता है, अजादारी इबादत है अदब रखती है, हर चीज की एक अदब है, तशी जनाजा का भी अदब है। मुतासिफाना अफसोस की बात यह कि आजकल चूंकि बहुत कॉमन होती जाती हैं चीजें, अकदार खत्म हो जाती हैं, तशी जनाजा में भी बाज़ औक़ात ऐसी चीजें देखने में आती हैं कि जो तशी जनाजा के मुताबिक नहीं होती, उसी जानिब इशारा कर रहा हूं ताकि हम भी सीख सकें। इमाम अली के जमाने में तशी जनाजा हो रही है, लोग शामिल हैं, मुशायत कर रहे हैं जनाजे के साथ साथ, मगर कुछ लोग उसी तशी जनाजा में बुलंद आवाज से हंस रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, आपस की गुफ्तगू में लगे हुए हैं, कहके लगा रहे हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनकी जानिब देखा, देखने के बाद कहा कि ये लोग किस गफलत में पड़ रहे हैं, इनकी तशी जनाजा का अंदाज ये है कि गोया मौत फकत इस जाने वाले के लिए थी, ये इस बात से गाफिल है हालांकि तशी जनाजा कर रहे हैं, हालांकि अपने कांधों पर उसको लेके जा रहे हैं, हालांकि चंद लम्हों पहले इनके दरमियान था। ये तो जाए इबरत है, ये तो लेसन लेने की जगह है, ये तो पैगाम लेने की जगह है, ये हत्ता इस पैगाम लेने की जगह पर भी अपनी तफरी में, अपनी हंसी मजाक में, अपनी दुनिया में लगे। ये तो वो जगह थी कि जहां आने के बाद इंसान को थोड़ी देर के लिए सुकून के साथ अपनी आखिरत की जानिब तवज्जो करनी चाहिए, तवज्जो रखिएगा। तो तशी जनाजा है, इमाम अली ने बयान किया, यार एक ऐसी हकीकत है जो हर इंसान के साथ है, रिश्ते खुदा ने बनाए लेकिन इन रिश्तों के बावजूद बहरहाल मौत एक हकीकत है, उसने आना है। इसी मौत के सफर के अंदर जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो लवाहिकीन के लिए कहा जाता है खुदा उनको सब्र जमील अता फरमाए, रह जाने वालों के लिए जो चीज है वो क्या चीज है, सब्र है, सब्र जमील, खुदा इनको सब्र की तौफीक दे। ये जुमले हम और आप भी अदा करते हैं, बस जाने वाला चला गया, रहने वालों के लिए सब्र की मंजिल है। सब्र वो बुनियादी नुक्ता है जो हर मोमिन के लिए खुदा की जानिब से फर्ज है, ईमान की अलामत ही सब्र है। सूरह असर को ले लीजिए, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर, असर की कसम हर इंसान घाटे में, हर इंसान इन्नल इंसाना हर इंसान घाटे में, और एक दूसरे को हमेशा हक की ताकीद और हमेशा सब्र की ताकीद करते रहे। सब्र ईमान की अलामतों में से एक अलामत है, तो कीजिएगा। लेकिन जो मौजू आपके सामने बयान करना चाह रहा हूं वो सब्र से अगली मंजिल है। सब्र एक मकाम है जो इंसानियत के लिए, सब्र से अगला मरहला जिसको खुदावंद आलम ने रखा कि अगरचे थोड़ा मुश्किल मरहला है लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए दरवाजा है, वो कौन सा मकाम है, उसे सब्र से अगली मंजिल का नाम है रजा, रजा की मंजिल, जिसके मुताबिक मैंने आयत पढ़ी आपके सामने। बस इसी पे इंशाल्लाह चंद नुकात, क्योंकि हम और आप जो महदूद जिंदगी गुजारने के लिए आए हैं इन्हीं मरातिब को हासिल करने के लिए आए हैं। इस दुनिया में रहते हुए मुमकिन है कोई मकाम साबरीन तक रहे, खुदा की बारगाह में अपने उस मकाम साबरीन के मुताबिक अजर पाएगा। इसी दुनिया में रहते हुए अगर किसी ने मेहनत कर ली, थोड़ा सा आगे बढ़ गया और मुकाम रजा तक पहुंच गया, तो कयामत के दिन खुदा वंदे आलम उसको उस मकाम पर लेकर जाएगा जो रजा वालों का मकाम, जिससे खुदा राजी है। ये दोनों मकाम एक नहीं है। सूरह वाकिया की फकत आयत का हवाला देते हुए आगे पढ़ जाऊं, सूरह वाकिया में खुदा वंदे आलम ने हम इंसानों के तीन ग्रोहों का बयान किया है। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, सबकत ले जाने वाले, वसाबुल मैमना दाने हाथ वाले, वसाबुल मशअमा उल्टे हाथ वाले, जो बाएं हाथ वाले हैं वो अजाब वाले हैं, जो असाब यमीन हैं निजात वाले हैं मगर दर्जे में साबिकीन से कमतर हैं। साबिकून वो हैं जो खुदा की बारगाह में इंतहाई आला मकाम वाले हैं। अजीज खुदा ने इस दुनिया में भेजकर सूरह वाकिया की इन आयात को हमें बताकर सिखाकर यह बता दिया कि देखो ये दुनिया जाए इम्तिहान भी है और मुसाबिका का मैदान भी है। मुसाबिके के मैदान में तुम्हें खड़ा किया है, आओ आगे बढ़ो, सबकत ले जाओ ताकि साबिकीन के साथ तुम्हारा महशर किया जा सके। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अजीजों, सब से आगे की मंजिल है मकाम रजा। फर्क क्या है? सब्र, इंसान मुमकिन है कि मुश्किल पर सब्र करे मगर उसके दिल के अंदर शिकवा मौजूद, जबान पर गिला लेके ना आए लेकिन दिल से राजी ना हो, दिल में गिला हो, दिल में तकलीफ हो, दिल में एक एहसास हो, ये मकाम साबिर हो सकता है। जबान से कुछ बयान नहीं कर रहा, जो कुछ हो गया ठीक है, खामोशी से देख रहा है। मकाम रजा क्या चीज है? मकाम रजा यह है कि इंसान के दिल में भी खुदा बंदे आलम से कोई शिकवा ना आए। शिकवा आना तो दूर की बात, बल्कि जो कुछ भी उसके सामने पेश आया वो उस पर खुदा की बारगाह में सजदे शुक्र बजा लाने वाला हो। यह मकाम रजा है, यह मकाम अहले बैत अलैहिम सलाम का मकाम है। बस आइए तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। सूरह फजर की आखिरी आयत को सरनामे कलाम करार दिया था। सूरह फजर की आखिरी आयत की मुनासबत से हमारे आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया था कि अपने असाब से कहा कि सूरह फजर की ज्यादा तिलावत किया करो। असाब ने पूछा या इब्ना रसूलुल्लाह किस वजह से? इमाम सादिक ने बयान किया इसलिए कि मेरे जद इमाम हुसैन का सूरह है। साहिल ने फिर पूछा मौला किस मुनासिबत से ये सूरह आपके जद इमाम हुसैन का सूरह है, यानी इसको क्यों नस्बत हासिल है सूरह को इमाम हुसैन से? छठे इमाम ने यह आखिरी आयत जो सूरह फजर की आखिरी आयत है उसकी तिलावत फरमाई, ये अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اے نفس مطمئنہ کے مالک اب اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹا اس طرح سے کہ تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جو جنت میں نے تیرے لیے آمادہ کی اس جنت میں آ جا اس آیت کی مناسبت سے یعنی امام حسین علیہ السلام نفس مطمئنہ کے مالک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خداوند عالم کی رضایت کی منزلوں میں اعلی ترین منزل پر فائز ہے، خدا سے راضی ہونے والے۔ راضی کا میں نے کہا بہن کیا رضا کیا مقام صبر سے بہت آگے کا مقام ہے، صابرین کم نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب خداوند عالم روز حشر لوگوں کو محشور کرے گا تو مقام صابرین پر قرار پانے والے خاص انداز میں خدا کی بارگاہ میں جائیں گے۔ خداوند عالم آواز دے گا اینا صابرین، صابرین کہاں ہیں جنہوں نے صبر کیا دنیا کی مشکلات کے اوپر، جنہوں نے صبر کیا تنگ دستی کے اوپر، جنہوں نے صبر کیا آفتوں کے اوپر، جنہوں نے صبر کیا جو کچھ میں نے امتحان لیا اس کے اوپر، ان کا ایک خاص مقام ہوگا۔ لیکن مقام رضا ایک الگ مقام ہے۔ رضا یعنی جہاں دل کے اندر بھی کوئی خیال نہ آئے، خداوند عالم کی معرفت اتنی ہو کہ انسان خدا سے دل میں بھی شکوا نہ کرے۔ امام حسین علیہ السلام کی نسبت اس آیت کو بیان کیا گیا، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ان اعلم الناس باللہ ارضاہم بقضاء اللہ عز وجل، خداوند عالم کی معرفت رکھنے والے وہ سب سے بڑے معرفت رکھنے والے افراد ہیں جو خداوند عالم کی قضاء و قدر پر راضی رہنے والے ہیں۔ اب یہیں سے ایک جملہ سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب ہے کہ رضا کی منزل پر وہ پہنچ پائے گا جس کی معرفت خدا کا دائرہ وسیع ہوگا،
जिसकी खुदा की पहचान जितनी बढ़ती चली जाएगी वो मकाम रजा से नजदीक होता चला जाएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जितनी मारिफत खुदा में इजाफा होगा, अब मारिफत खुदा के साथ साथ मोहब्बत खुदा खुद ब खुद आती है। हदीस कुदसी है, मन तलबनी वजदनी, जो मुझको तलब करता है मेरी तलाश में निकलता है वजदनी, मुझे पा लेता है। क्यों पा लेता है? सवाल कीजिए अपने आप से, खुदा को तलाश करने वाला क्यों खुदा को पा लेता है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुताबिक, अमियत ऐनुन ला तराक, खुदाया जो आंख इस दुनिया में रहते हुए तुझे ना देख पाए वो अंधी है। इस दुनिया में जो जलवा है वो फकत तेरा है। इस दुनिया के अंदर जो इजहार है फकत तेरा है। तू हर जगह नजर आता है। इमाम हुसैन ने बयान किया, अमियत ऐनुन ला तराक, जो आंख तुझे ना देख पाए वो अंधी है, उसकी आंखों में नूर मौजूद नहीं है। इसीलिए मन तलबनी वजदनी, जो मुझे तलब करेगा पा लेगा। वमन वजदनी अरफनी, जो मुझे पाएगा उसे मेरी पहचान हासिल हो जाएगी। वमन अरफनी अहब्बनी, और जो मेरी मारिफत हासिल करेगा, मेरी मारिफत का लाजमा यही है कि मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। हो नहीं सकता कि कोई खुदा तक पहुंचे और खुदा की मोहब्बत का असीर ना हो। इसीलिए अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जाकर देखिए, मारिफत खुदा में कमाल की मंजिल पर है तो मोहब्बत खुदा में भी कमाल की मंजिल पर, ऐसा है या नहीं? जिस तरह सूरज का लाजमा हरारत है, सूरज का लाजमा रोशनी है, बिल्कुल वैसे ही खुदा की मारिफत का लाजमा मोहब्बत खुदा है। अब अगर मैं अपनी जिंदगी में मोहब्बत खुदा में कुछ कमी पाऊं तो मुझे खुद ब खुद ये निशानी मिल जाती है कि मेरी मारिफत खुदा में कमी है, मेरी मारिफत खुदा नाकिस है, मैंने खुदा को नहीं पहचाना। खुदा वंदे आलम की पहचान के साथ मोहब्बत है, बस अजी तवज्जो कीजिएगा। इमाम ने इरशाद फरमाया, इन आलम अन्नास बिल्लाह अरज़ाहुम बिक़ज़ाइल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो खुदा की मारिफत ज्यादा रखता है वो खुदा की रजा पर राजी होता है। खुदा की रजा पर राजी है, कदर खुदा पर राजी है, इसका मतलब है इसकी मारिफत का मरहला बहुत बुलंद है। हमें और आपको ये दुआएं सिखाई गई हैं, इसको हम दुआए हिफ्ज अमान के नाम से पढ़ते हैं। दुआए हिफ्ज अमान यकीनन आप मोमिनीन इसको नमाजों में पढ़ते हैं, बहुत मारूफ दुआ है। उसकी इब्तिदा इस तरह से, यानी मारिफत रजा, रजा के दो मरहले फकत बयान करूंगा जितनी दामन वक्त में गुंजाइश होगी। एक रजा का मरहला रुबूबियत इलाही और दूसरा कजा व कदर पे, इसी पे गुफ्तगू इंशाल्लाह तमाम करेंगे। पहला मरहला खुदा की रुबूबियत का है, इसमें हमें दुआ सिखाई गई दुआ हिफ्ज अमान के नाम से, बड़ी बरकत वाली दुआ है जिसे बाज मोमिनीन हर ताकीबात में पढ़ते हैं। रजी तो बिल्लाह रब्बन, यहां से शुरू होती है, रजी तो बिल्लाह रब्बन, मैं राजी हूं इस बात से कि मेरा रब पालने वाला खुदावंद आलम है। मैं किसकी रुबूबियत के साए में चलना चाहता हूं? अल्लाह की। रजी तो बिल्लाह रब्बा, मैं अल्लाह की रुबूबियत पर राजी हूं, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतरीन पालने वाला कोई नहीं है, उससे ज्यादा मोहब्बत से पालने वाला कोई नहीं है। अपने आप से सवाल कीजिए, ये बातें मुबालगा हैं या हकीकत हैं? आपको जवाब खुद से मिलेगा जब आप और मैं अपनी खिलकत के बारे में फकत सोच लेंगे, हमारा फकत अपनी पैदाइश के बारे में सोच लें, अपने आप से फकत इतना सोचें, अपने आप को जवाब दे दें कि किस हक की बुनियाद पर हम इस जमीन पर आए हैं, हमारा क्या हक था खुदा के ऊपर कि जिसकी वजह से हम कहें कि हमारा हक था कि खुदा हमें इस जमीन पर इंसान बनाकर भेजता। इस मजमे में से कोई एक शख्स भी नहीं कह सकता कि मेरा खुदा के ऊपर कोई हक था कि उस हक की वजह से खुदा मुझे इस वजूद में इस दुनिया के अंदर भेजता। था किसी का हक अजीज हूं? नहीं। इसका मतलब है मेरा और आपका ये वजूद खुदा की मोहब्बत की तजल्ली है। मेरा और आप अपने इस वजूद के अंदर खुदा की इनायत लिए बैठे हैं। मेरा और आपका ये वजूद, इसको मैं अपनी जम से बयान नहीं कर रहा, हमारे आपके मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। जब आप दुआए कुमैल पढ़ते हैं इंशाल्लाह, कल शबे जुमा जो गुजर गए आपने इसमें पढ़ा होगा, या मन बदअ खल्की, है वो परवरदिगार जिसने मेरी खिलकत का आगाज किया, बुर्री व तग़ज़ियती, मेरे साथ अच्छाई की, नेकी की, भलाई की, मुझे ग़िज़ा फराहम पहुंचाता रहा, कहां? जब मैं शिकम मादर में था, मेरी मां को भी नहीं मालूम था मेरी जरूरियात क्या है, तो उन पर्दों के अंदर मुझे पालता रहा है। बुर्री व तग़ज़ियती, तूने मेरी परवरिश की। सूरह इंसान या सूरह दहर की इब्तिदाई आयात मेरे रब के बारे में, हलता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैयम मज़कूरा, आया इंसान पर एक वक्त ऐसा नहीं था कि वो कोई काबिल जिक्र शय ना था।
उसका जिक्र ही नहीं था, काबिले जिक्र शायद ना था। हमने इंसान को वजूद दिया, हमने इंसान को बनाया, बस तवज्जो कीजिएगा। लिहाजा पहली चीज क्या चीज है कि खुदावंद आलम की रुबूबियत पर राजी हूं, मेरा रब वो है, रजी तो बिल्लाह रब। अब जब खुदा मेरा रब है तो इस रुबूबियत के दायरे में जो कुछ उसने रखा है मैं उस पर राजी हूं। अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, रजायत की मंजिल कल्बी मंजिल है, यानी दिल से राजी होना, दिल से किसी चीज को तस्लीम करना, उसमें अपनी भलाई को समझना, अल्लाह की रुबूबियत पर राजी हूं। और किस चीज पर राजी है एक मोमिन? वबिल इस्लाम दीना, मैं इस्लाम पर राजी हूं कि जो दीन इस्लाम खुदा ने दिया है ये इतना जामे दीन है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव दीन है कि इसके अंदर मेरी दुनिया आखिरत की सआदत तामीन होती है। मैं इस इस्लाम पर राजी हूं और उसका शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे ये इस्लाम देकर दुनिया आखिरत की सआदत अदा की। और इस दीन तक पहुंचने का जो रास्ता बनाया, क्या बनाया? वब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। मैं इस बात पर भी राजी हूं कि खुदा ने अपने इस दीन तक पहुंचने के लिए अपने आखिरी नबी का उम्मती बनाकर मुझे इस दुनिया में भेजा है। मैं इस नबी की नबूवत पर राजी हूं। यकीनन हजरत मूसा एक बड़े नबी हैं, यकीनन हजरत इब्राहिम एक बड़े नबी हैं, यकीनन हजरत ईसा उल अज़म अंबिया में से हैं, यकीनन खुदावंदे आलम के 1,24,000 अंबिया में से हर नबी लायक एहतराम है, हर नबी पर ईमान मिन जुमला रखना मेरे अकीदे का हिस्सा है, लेकिन कोई भी नबी खत्म उल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा के बराबर नहीं हो सकता। हर हर नबी की नबूवत की शर्त रिसालत माब की नबूवत का इकरार है। हर नबी की उम्मत से रिसालत माब की रिसालत की गवाही ली गई। ऐसा ही है, ऐसी है नहीं? खुदा आलम ने हजरत मूसा पर, हजरत ईसा पर, जमीन पर मनो सलवा नाजिल किया, ये रसूलुल्लाह हैं कि जिन्हें मेराज के लिए आसमानों पर बुलाया गया। लिहाजा रजी तो बिल्लाह रब्बा, मैं अल्लाह की रुबूबियत पर राजी हूं, जैसा परवरदिगार कोई नहीं हो, जैसा पालने वाला कोई नहीं हो, जैसा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है, मैं राजी हूं, मेरा दिल उसको तस्लीम करता है। रजी तो बिल इस्लाम दीना, मैं इस्लाम को मानता हूं जो कामिल तरीन दीन है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। और ये दीन किसके जरिए से पहुंचा? रसूल अल्लाह के जरिए से। इसीलिए मैं इस नबी की नबूवत पर राजी हूं। अब इस नबी ने आने के बाद जो इंसानी दस्तूर के लिए मुझे मंशूर दिया, मैं उस किताब पर राजी हूं कि क्या है? कुरान। वबिल कुरान किताबा, जो इंसानी जिंदगी गुजारने का तरीका इस नबी ने दिया कुरान के जरिए से, मैं उस पर भी राजी हूं। और इसी नबी ने अपने बाद अपनी उम्मत को दर बदर की ठोकरों को खाने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि अपने बाद मैदान गदीर में बाकायदा दरवाजा दिखा कर कहा मन कुंतु मौला हु फाज़ा अलीयुन मौला। इसीलिए मैं वबे अली इमामा, और मैं किस चीज पर राजी हूं? नबी के बाद अली इब्ने अबी तालिब की इमामत पर भी मैं राजी रहने वालों में से। अली के बाद सिलसिला पूरे आइमा का नाम है, वबिल वबे अली इमामा, वबिल हसन, वबिल हुसैन इला इमाम आसर अजल्लाहु ताला फरजो शरीफ। ये दुआए हिफ्ज ईमान हमें बताई गई, इसके अंदर आपने क्या पढ़ा? रजी तो बिल्ला, मैं राजी हूं, यानी ये तमाम चीजें वो हैं जो मेरी जिंदगी के लिए लाजमी थी। मैंने इन चीजों को बैठकर सोचा समझा और मुझे हकीकत की निगाह हमें यह नजर आया, ना खुदा से बेहतर परवरदिगार है, ना इस्लाम से बेहतर दीन है, ना कुरान से बेहतर किताब है, ना हजरत मोहम्मद से बढ़कर कोई नबी है, और ना अली इब्ने अबी तालिब से बढ़कर कोई इमाम है, रहनुमा। जब ये तमाम चीजें मैंने अक्ल फिक्र और शऊर से समझ ली, रिजायत की मंजिल है, मैं राजी हूं। यानी रिजायत से क्या मुराद है? अगर खुदा मुझे अब इम्कान दे, इख्तियार दे कि इन चीजों से हटकर किसी और सिमत जाऊं, हरगिज जाने वाला नहीं हूं, हरगिज जाने वाला नहीं हूं। तो जो कीजिएगा अजीज, ये खुदा की रुबूबियत। अब खुदा की रुबूबियत के अंदर यानी जो कुछ भी खुदा ने भेजा उस पर राजी हूं, बस ये रिजायत अमल के साथ है अजीजों। इस्लाम पर अगर राजी हूं तो इसका मतलब यह होगा कि जिंदगी का जो दस्तूर है वो फकत इस्लाम है। अब अगर इस्लाम ने मुझको अहकाम दिए, कुरान ने मुझे अहकाम बयान किए, तो मुझे कुरान के मुकाबले में किसी और से हुक्म लेने की जरूरत नहीं। अगर मेरा इमाम अली इब्ने अबी तालिब है तो फिर मैं दुनिया के किसी भी निजाम की पैरवी करते हुए उसको अपना रहनुमा तस्लीम नहीं कर सकता। इसका मतलब है फिर मैं सोशलिज्म को कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा, इसका मतलब है मैं कभी भी कैपिटलिज्म को तस्लीम नहीं करूंगा, मैं कभी भी इंपीरियलिज्म को तस्लीम नहीं करूंगा, मैं दुनिया के किसी निजाम को तस्लीम नहीं करूंगा, चूंकि मैं राजी हूं इस पर कि मेरा निजाम हिदायत अली इब्न अबी तालिब के हाथ में, मेरा निजाम हिदायत आइम्मा अलैहिस्सलाम के साथ, खुदा ने रुबूबियत के साए में जितनी चीजें रखी हैं उस पर राजी हूं, इस निजाम के साथ जुड़ा हुआ हूं, इस निजाम के साथ वाबस्ता हूं, ये मेरी और आपकी जिंदगी। मैं अर्ज कर रहा हूं किस मकाम तक पहुंचने के लिए, मुकाम रजा, मुकाम साबरीन है मुकाम है, लेकिन उससे बड़ा मकाम मुकाम रजा है, ताकि अगर हमें और आप मुकाम रजा पर इस दुनिया में रहते हुए पहुंच जाएंगे तो खुदा हमें किसके साथ मशहूर करेगा, वो आयत ज़हन में रखेगा छठे इमाम की, मकाम रजा किसका मकाम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसके दिल में आरज़ू तमन्ना है कि उसका दाइमी हशर इमाम हुसैन के साथ हो, उसे चाहिए कि मकाम रजा तक पहुंचने की कोशिश करे। दुरूद पढ़िए मलिक मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चंद नुकात और बयान करके बस आपकी जहमत तमाम करूं। खुदा की रजा रुबूबियत पर राजी रहने में क्या चीज है, खुदा वो बेहतर जानता है जो मेरे साथ होना चाहिए। कुरान की दूसरी आयत ले लीजिए, असा अन तुहिब्बु शैअन वहुवा शर्रुल लकुम। इंसान हो जब तुम खुदा तक पहुंचे हो तो देखो खुदा पर भरोसा रखो, जब खुदा की रुबूबियत तक आए हो तो खुदा पर एतमाद करो। खुदा वंदे आलम वो है कि जिसने तुम्हें बेनियाजी के बावजूद खल्क किया है, खुदा वंदे आलम वो है कि जिसने इस कायनात को खल्क किया, खुदा वो है जो इस कायनात से कुछ अपने लिए नफा हासिल नहीं करता, कायनात की कोई शय खुदा को नफा नहीं पहुंचा सकती, उसने जो कुछ खल्क किया किसके लिए किया, तुम्हारे लिए किया। लिहाजा अब खुदा पर भरोसा रखो, वो खुदा जो तुम्हें जिंदगी अता करने वाला है, अगर उसने तुमको कुछ चीजों से रोका है तो यकीनन इसमें तुम्हारी भलाई है, अगर उसने तुम्हें किसी चीज का हुक्म दिया है तो तुम्हें महदूद नहीं किया, तुम्हारी जिंदगी का जो लाजमा है जरूरत है उसकी खातिर तुम्हें हुक्म दिया है। असान तो है बाज़ोकात ऐसा होगा कि तुम किसी चीज को पसंद करोगे वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी, वैसा अंतुक रेहू शाया, और बाज़ोकात तुम्हें किसी चीज से नागवारी गुजरेगी, नागवार होगी, खुदा उसे तुम्हारे पर भेजेगा, वह खैर लकुम, क्यों, क्योंकि तुम्हारे लिए बेहतर होगी। वल्लाहु अलम, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, जो कीजिएगा हमारी जिंदगी में पेश आएगा, हमें बहुत सारे ऐसे हवादिस से गुजरना पड़ता है कि जिनको हम पसंद नहीं करते। खुदा वाज़े तौर पे कह रहे हैं अगर रुबूबियत पर एतमाद है, अगर रुबूबियत पर राजी हो तो फिर इस बात का यकीन रखना कि अगर कोई मुश्किल आई है तो इसमें तुम्हारी भलाई है, अगर कोई हुक्म सादिर हुआ है तुम्हारी भलाई है। अब यहां पर अपनी बहनों के लिए एक पैगाम दे दूं, अगर खुदावंदे आलम ने तुम्हारे लिए हिजाब का हुक्म दिया है, खुदा की रुबूबियत पे अगर राजी हो, दीन इस्लाम पर अगर राजी हो, कुरान के उनवान पे उनवाने किताब राजी हो, तो फिर पर्दे के बारे में मत सोचो कि पर्दा तुम्हें महदूद करने के लिए, पर्दा तुम्हें महदूद करने के लिए नहीं है, पर्दा तुम्हारी हिफाजत का हिसार है, पर्दा तुम्हारी हिफाजत का हिसार है। खुदा बंदे आलम जो फयाज है अता करने वाला, खुद सोचें, एक मेरी बहन खुद सोचे बैठकर कि खुदा जो अता करने वाला है वो भला किसी चीज से रोकेगा क्यों, क्यों मना कर रहे हैं कि खुदा बंदे आलम इस दुनिया के अंदर अपने आप को बना सिंघार कर लोगों की निगाहों के सामने ना आओ, अगर ऐसा करोगे तो खुदा का क्या नुकसान होगा, किसका नुकसान होगा, चूंकि तुम्हारी खुदा की बारगाह में मंजिलत है, मकाम है, तुम खुदा की निगाह में एक अहम मकाम रखती हो मेरी बहन, इसलिए खुदा चाहता है तुम हर कस और नाकस की निगाह पलीत का शिकार ना बनो। जब तुम बाहर निकलो तो ऐसे निकलो तुम्हारा वकार, तुम्हारी मतानत, तुम्हारा हिजाब रिफ्लेक्ट करे कि तुम दीन इस्लाम की मानने वाली हो। इस हिजाब के जरिए से तुम्हें खुदा ने महदूद नहीं किया, यह गर्व का दिया हुआ तसव्वुर है, यह मगरबी नजरिया है। जब आपने इस्लाम को मान लिया, मैंने इसलिए कहा इमामत को मान लिया, इमामत को मानने वाला फिर किसी और निजाम के पीछे नहीं चलेगा। मगरिब को मालूम ही नहीं है हकीकत क्या है, मगरिब को मालूम ही नहीं है दुनिया खुदा वंदे आलम ने किस हदफ के तहत बनाया। ठीक है, इल्मी एतवार से आगे हम मगरिब की मजम्मत में जो हकायक है उनका भी इंकार नहीं करेंगे, हमारा आप जो टेक्नोलॉजी लेके चल रहे हैं माने ना माने वहीं से आती है, क्या करें, मुसलमानों ने पढ़ा नहीं, मुसलमानों ने फकत नारे लगाए, मखसूस अहले बैत के मानने वालों के लिए कह रहा हूं, अनामयतुल इल्म वालियुन बाबुहा के मानने वालों के लिए कह रहा हूं, हमने इन चीजों में नारे तो लगाए अमल ही नहीं किया, किया होता तो इतनी बड़ी तादाद जो पाकिस्तान में हमारी रह रही है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े
एजुकेशनिस्ट भी हैं बहुत से अफराद, बहुत बड़े बड़े मकाम तक पहुंचे हैं, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को हमने तामीर किया है, उसकी बुनियाद में शामिल है, आज तक हम अपना बोर्ड नहीं बना सके, तालीमी निजाम नहीं बना सके। आज भी हमें अपने बच्चों को इम्तिहान दिलवाने के लिए दूसरे बोर्ड की तरफ जाना पड़ता है ना, ऐसा ही ठीक है, नहीं बना सके निजाम, हमने सिर्फ नारे लगाए थे, वो जो कीजिएगा, जिसकी जो हकीकत है वो वहां से लेनी चाहिए, ठीक है अंग्रेज ने काम किया, लेकिन इंसान के बारे में वो फैसला नहीं कर सकता। अगर वो फैसला कर रहा होता, बाद बीच में आगे से बयान कर रहा हूं, जो बच्चे यहां बैठे उनके लिए ठीक है, कहीं भी जाने का मौका मिले जाओ, किसी ने मना नहीं किया, मगर अली वाले बन कर जाओ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी को साथ लेकर जाओ। अगर उनके पास हकीकतों को समझने की सलाहियत होती तो वहां आज एक कल्चर डेवलप ना होता जो वहां डेवलप हो गया, वो क्या है, ह्यूमन एनिमल्स के नाम से, ह्यूमन डॉग्स, ह्यूमन एनिमल्स, बाकायदा इंसान पैसा देकर अपने लिए वो हुलिया अख्तियार कर रहा है जिससे वो एक हैवान नजर आए। ये वो बात है जो अभी की बात है, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, $60,000 देकर एक इंसान वो गेटअप हासिल करता है जिससे वो कुत्ता नजर आए, और उसके बाद वो अपने आप को किसी इंसान के हाथों में ब्रोनवाने मालिक अपनी लगाम देता है कि तुम मेरे मालिक हो, जिधर चाहो ले जाओ। ये कॉन्सेप्ट आया वेस्ट के अंदर, ह्यूमन एनिमल्स, इसको देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा, ह्यूमन डॉग्स। अगर उनको इंसानियत का पता होता, इंसानी शरफ से वाकिफ होते, तो इंसान की तजलील ना करते, ठीक है, तवज्जो कीजिएगा। बहरहाल खुदा बंदे आलम ने जो रास्ता दिया, जो चीज खुदा ने बताई, अगर खुदा की रुबूबियत पर राजी हो, दीन इस्लाम पर राजी हो, तो उसके अहकाम को कबूल करो। मुमकिन है तुम्हें समझ में ना आए, बहुत सी चीजें समझ में नहीं आएंगी हमें, डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा समझ में आता है, हमें मालूम होता है जो डॉक्टर ने दवाएं हमें दी हैं, इन दवाओं में जो उसने कहा है कि दो दवाएं सुबह लेना, उसी की एक दवा शाम में लेना, आधी तोड़ लेना है कैप्सूल को या टेबलेट्स को, हमें समझ में आता है, नहीं आता, एतमाद करते हैं किसके ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, कि उसने ये नुस्खे में लिखा है, इस पर अमल करना है, क्यों करना है, इस फील्ड का माहिर वो है, हमारी भलाई के लिए कह रहा है, कम से कम डॉक्टर जितना एतमाद खुदा पर होना चाहिए, कम से कम डॉक्टर जितना एतमाद तो खुदा पर करना चाहिए, ऐसा ही है नहीं, डॉक्टर तो हमसे फीस भी लेता है, खुदा तो फीस भी नहीं लेता, उसने तो अंबिया को भी हमारी हिदायत के लिए भेज दिया कि जाओ मेरे बंदों की खातिर पत्थर खाना पड़े पत्थर खा लेना, तुम्हारे वक्त कूड़ा फेंका जाए बर्दाश्त कर लेना, तुम्हें जलावतन किया जाए जलावतन हो जाना, मगर मेरे बंदों को मुझसे मुत्तसिल करने की कोशिश करना। बहुत बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह मुकाम रजा, यानी खुदा की रुबूबियत पर राजी होना, जितना इल्म खुदा का बढ़ता जाएगा, मारिफत बढ़ती जाएगी, उतना इंसान खुदा के साए में आता चला जाएगा। अगर कोई इंसान खुदा से दूर है, इसका मतलब मारिफत तक नहीं पहुंच पाया। आइमा अलैहिस्सलाम का काम यह था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आप मोमिनीन ज़ियारत अरबईन में इसी चीज को बयान करते हैं कि परवरदिगार मैं गवाही दे रहा हूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान कुर्बान की, क्यों की, लियस्तनकिज़ा इबादक मिनल जहालत व हैरत ज़लाला, ताकि तेरे बंदों को जहालत और गुमराही से निकाल सकें। जहालत और गुमराही से निकालना इतना अहम है, मारिफत खुदा का फैलाना इतना अहम है कि इमाम हुसैन जैसा इमाम अपने कीमती खून को राह में निछावर कर देता है, अपने अली अकबर की कुर्बानी इमाम हुसैन देते हैं, क्यों, ताकि लोग जहालत और गुमराही से निकले, यानी खुदा की मारिफत के साए में जिंदगी गुजारें। बस जितना जितना मेरी जिंदगी में मारिफत खुदा होगी, उतना उतना मेरी जिंदगी का दायरा अच्छा होता चलेगा। अगला मरहला रुबूबियत इलाही पर राजी होना, और उसके बाद खुदा की कजा कदर पर राजी होना है। खुदा की कजा कदर पर राजी होना यानी जो खुदा फैसला करे, तो जो कीजिएगा चंद का दौर, खुदा जो हमारे लिए फैसला करेगा, मैंने अर्ज किया बेनियाज है, कंजूस नहीं है, बखील नहीं है, फयाज है, अता करने वाला है। अगर हमें देने में किसी चीज को कमी हमें महसूस हो रहा है कि खुदा हमें नहीं दे रहा, बार बार मांगने के बावजूद नहीं दे रहा, तो इस आयत को जो मैंने पढ़ दी पहले याद रखना चाहिए, तुम समझते हो तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मैं जानता हूं मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे रहा। इसकी एक मिसाल देते हैं उलमा, उस मिसाल को ले लें ताकि जवान बच्चों का जहन वाज़ेह हो जाए। मिसाल ये कि एक छोटा बच्चा जो घुटनियों के बल चल रहा हो, ट्रॉलिंग कर रहा हो, ये बच्चा किसी तरह घुटनियों के बल चलते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे कि जहां आगे एक खंजर और चाकू पड़ा हुआ हो,
खूब मिसाल कीजिएगा, बच्चों को बयान कर रहा हूं, कॉलिंग करता हुआ बच्चा जो बोल भी नहीं सकता, अभी आया वो कॉल करते हुए घुटनों के बल चलता हुआ आया, एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पे चाकू और खंजर पड़ा है। आपने दूर से देख लिया कि अब ये बच्चा बस एक कदम आगे और बढ़ेगा, एक हरकत और लेगा, इसके हाथ में चाकू आ जाएगा। जब ये चाकू को उठाएगा क्या करेगा, उस बच्चे को नहीं पता ये क्या चीज है, उसे नहीं मालूम ये चाकू है। उस बच्चे के लिए ये खिलौने की तरह की चीज है, वो खिलौनों से आती है, खिलौना किसे वाकिफ है। वो बच्चा उठा के उस चाकू को क्या करेगा, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकेगा। आप आगे बढ़कर क्या करेंगे, उस बच्चे से उस चाकू को दूर, यानी उस बच्चे को उस चीज से महरूम कर देंगे जो बच्चा अपने खेल की चीज समझते हुए आगे आ रहा था। अब बच्चा यहां पर आपके इस अमल पर राजी तो नहीं होगा, रोएगा, क्योंकि वो खिलौना समझ के आया था, उसके दिल में था मैं इसको हाथ में उठाऊं, इससे खेलूं, जो उसकी तबीयत है उस एज के मुताबिक। अब जब बच्चे से आपने उस चीज को दूर किया, यानी आपने महरूम कर दिया उस चीज से, और बच्चा रो रहा है, बच्चा बिलबिला रहा है, बच्चा गिड़गिड़ा रहा है, अपने इंसाफ से बताइए कि कौन सा अकलमंद इंसान है जो बच्चे के फकत रोने की वजह से उसके हाथ में चाकू दे दे, चलो उसको राजी करता हूं। रो रहा है, बिलबिला रहा है, चिल्ला रहा है, आप नहीं देंगे उसके हाथ में चाकू। अगर आप उसके हाथ में वो चाकू देंगे, आपने उस बच्चे के साथ मेहरबानी की या जुल्म किया? जुल्म किया। आपकी मोहब्बत का तकाजा क्या है, वो जितना रोता रहे, चूंकि अभी उसको समझ नहीं है, तो जो कीजिएगा, वो अपने नफा नुकसान को नहीं समझ पा रहा, आपकी मोहब्बत और अकल का तकाजा है, आप उसको वो चाकू हाथ में हरगिज नहीं देंगे, ऐ नहीं खुदा हमारे साथ करता है। हम किसी चीज को अपने लिए समझते हैं कि हमारी जिंदगी में जरूरी है, हम गिड़गिड़ाते हैं, दुआ करते हैं, रोते हैं, फरियाद करते हैं, और उस चीज के ना मिलने पे खुदा की बारगाह में शिकवा भी कर देते हैं, मगर खुदा जानता है कि उस चीज का मिलना हमारे लिए नुकसान में है, खुदा उस चीज को हमें नहीं देता। इसके एवज में खुदा क्या करता है, रिवायत मासूमीन ले लीजिए कि अगर इस दुनिया में इंसान दुआ करता है और उसकी दुआ मुस्तजाब उसके मुताबिक नहीं होती, और ये इंसान जब ऊपर आखिरत में जाएगा खुदा की बारगाह में, जब अपनी रुकी हुई दुआओं का अजर देखेगा, यानी खुदा जब्बार है, जब्बार का मतलब है कंपनसेट करने वाला, यहां नहीं देगा कहीं और देगा, ये नहीं देगा कुछ और देगा, खुदा वंदे आलम फैयाज है, जब्बार है, जुबरान करने वाला है, कंपनसेट करने वाला है। आपने दुआ मांगी, उसने वादा किया था, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम पुकारो मैं सुनूंगा, वादा किया था उसने, वैदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ए हबीब जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे कि मैं करीब हूं, उजीब तद्दाई ज़ादान, जब कोई पुकारता मैं सुनता हूं, मुझे और आपको महसूस होता है, नहीं सुना, नहीं सुन रहा, नहीं, उसने जिस वक्त आपने पुकारा सुन लिया, नफक सुन लिया, कभी भी कर लिया, हां उसकी शक्ल बदलने का इख्तियार उसके पास है, आपने सोचा आपके लिए बेहतरी थी, इसलिए रिवायत मासूम है, जब आप जाएंगे ऊपर महशर में, आप आलम महशर में खड़े होंगे, और जब वहां पे आपके सामने कुछ अजर आएगा, उस अजर की अजमत को देखकर आप खुदा से पूछेंगे बारे ला ये कौन से अमल का नतीजा है, खुदा की तरफ से जवाब आएगा ये तुमने दुआएं मांगी थी, और जिन दुआओं को मैंने अपनी मसलहत से तुम्हारे हक में कबूल नहीं किया था, तुम उस पर साबिर और राजी हो गए थे, ये उन रुकी हुई दुआओं का अजर है। वहां इंसान बयान करेगा काश मैं पूरी जिंदगी दुआ मांगता रहता, मेरी कोई दुआ इस्तेजाबत तक ना पहुंचती, ताकि इतना अच्छा अजर मुझे मिलता, दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद तक। बस दूसरी मंजिल खुदा वंदे आलम रहमत करते उसकी कजा पर राजी रहना है। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, पांचवें इमाम से उनकी मुलाकात हुई, इमाम ने उनसे पूछा कैफ हालुका या जाबिर, ए जाबिर कैसी ये हालत है तुम्हारी, आज जो हमारे सामने आए हो क्या कैफियत है। जाबिर ने पलट कर तीन चीजों का बयान किया, कहा मौला मैंने इस हालत में सुबह की है कि मेरी निगाह में बीमार होना सेहत याबी से बेहतर है, मेरी निगाह में पैसा कम हो बेनियाद तमानगरी से बेहतर है, मेरी निगाह में अगर मौत आ जाए बेहतर है, इंसान गुनाहों से बचेगा, और मेरी निगाह में मौत हयात से बेहतर है। अपने एतबार से तीन जवाब दे दिए। अब जाबिर ने इमाम से पूछा मौला आपकी क्या कैफियत है, तवज्जो कीजिएगा। इमाम ने इरशाद फरमाया जाबिर हम अहले बैत अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से किसी चीज को खुदा से तलब नहीं करते, अगर खुदावंदे आलम हमारे लिए सेहत का फैसला करे हम सेहत पर राजी, खुदा हमें मर्ज मुब्तला करे हम मर्ज पर राजी, खुदा हमें बेनियाज करे तमंगर बनाए उस हाल पर राजी, खुदा हमारे हाथ को तंग कर दे उस पर राजी है, खुदा वंदे आलम हमें मौत देना चाहे उस पर राजी, खुदा हमारी हयात को जारी रखना चाहे उस पर राजी।
जाबिर हम अपनी तरफ से कोई चीज नहीं कहते कि हम इसे पसंद करते हैं, इस चीज को पसंद नहीं करते, जो खुदा हमारे लिए मुअय्यन और मुकर्रर करे। फिर इमाम ने इरशाद फरमाया रिज़ल्लाह रिज़ाना अहलल बैत, जिस चीज पे खुदा राजी हो हम अहले बैत उस पर राजी हो जाया करते हैं। यही अहले बैत के मानने वालों का रास्ता, बस आखिरी नुकात आपके सामने बयान कर रहा हूं अज़ीज़ों, यही हमारा भी रास्ता है। लेकिन हाँ, इसमें एक नुकता जहन में रहे कि खुदा की कजा और कदर पर राजी होने का मतलब बाज़ औक़ात इंसान अपनी सुस्ती और कोताही को कजा और कदर का नाम देता है। ये आलम आलम असबाब है अज़ीज़ान मोहतरम, इस दुनिया में चाहे आखरत का मामला हो चाहे दुनिया का मामला हो, दोनों मामलात के अंदर अपने हिस्से का कदम उठाना शर्त है, अपने हिस्से की मेहनत शर्त है। जब इंसान अपने हिस्से का कदम उठाएगा और उसके बाद जो मयस्सर आए वह खुदा की रजा है। हमारे यहां बाज़ोबाद ये करते हैं लोग, अपने हिस्से का काम नहीं करते, तंगदस्त हो गए, जॉब क्राइसिस में फंस गए, जॉब नहीं मिल रही, उसके बाद कहते हैं क्या करें खुदा का, जिस हाल में रखे नहीं, खुदा ने कहा था कदम उठाओ अपने हिस्से का काम करो। इसकी एक मिसाल अभी जहन में आ गई, आपके सामने बयान कर दूं, खुदा की रजा पर राजी होने का एक काम इस वक्त फलस्तीनी कर रहे हैं, अपने हिस्से का काम अंजाम दे रहे हैं। इतने बड़े मुतकब्बिर के सामने अलम जिहाद बुलंद किया हुआ है, मुस्तकिल लड़ रहे हैं। आप और मैं आगा हैं और आगा होना चाहिए। दौरान गैबत कुबरा की अहम तरीन चीजों में से ये कि आज जमाने से आगाही रखिएगा। लड़ रहे हैं, उस बाप की तस्वीर को आपने भी देखा होगा जिसके हाथों पर उसका बच्चा टुकड़े टुकड़े हुआ हुआ है, सर का आधा हिस्सा नहीं है, जिस्म के आधे आजा नहीं है। वो बाप अपने हाथों में उस बच्चे को उठाकर एक जुमला कह रहा है, वो जुमला क्या कह रहा है, कहता है रजीना या रब, ए परवरदिगार इस हालत पे राजी हूं, फर्ज अन्नी तू मुझसे राजी रहना, रजीना या रब, ये जुमले उसके रजीना या रब, मैं राजी हूं उस पे है मेरे परवरदिगार, फर्ज अन्नी तू मुझसे राजी होना। क्यों राजी हूं, इसलिए कि जब इज्जत के लिए आगे बढ़ना होगा तो लामहला मुकावत करनी पड़ेगी, जब अपने वतन को हासिल करना होगा जिस जालिम को बाहर वालों ने लाके बिठाया उसे लड़ना पड़ेगा, खुदा या कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी दिए बगैर नहीं होगा मामला हल, मैं इसलिए राजी हूं, तवज्जो कीजिएगा, ये रिजायत सही है। इसका कहना कि जो हो रहा है मैं इस पर राजी हूं, जो कि मुकाबला कर रहा है, जहां मार सकता है दुश्मन को मार रहा है, उसके बाद जो उसके नसीब में आ रहा है उसको पे कह रहा है मैं राजी हूं। अरब ममालिक भी राजी बैठे हुए हैं, वो भी राजी है, किस चीज पर राजी है, जो इसराइल कर रहा है उस पर राजी है, ये रिजायत नहीं है। ये कहा जा रहा है ममालिक फलस्तीनियों को कह रहे हैं कि तुम खामखा अपने आप को जान हलकान कर रहे हो, खामखा इतने बड़े दियो के सामने खड़े हो, राजी हो जाओ उसकी तकसीम पर, नहीं तुम्हारे पास ताकत है कुदरत है। फकत तुर्की और उर्दुन अगर अपना पेट्रोल देना बंद कर दें तो इसराइल की जंगी मशीनरी आज बंद हो जाएगी, तुर्की और उर्दुन। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, फलस्तीनियों को कह रहे हैं राजी हो, जो तकसीम बनी है उस पर राजी हो, अगर तुम्हें गजा से निकालना भी चाहता है इसराइल निकल जाओ, रिजायत दो, ये रिजायत नहीं है, अपने से का काम करो बस। अजीजों, हजरत मूसा से खुदा बंदे आलम ने बयान किया, हजरत मूसा ने खुदा से पूछा खुदाया उस बंदे की निशानी दे जिससे तू राजी हो, खुदा ने कहा मूसा फला साहिल दरिया पर एक शख्स है उसके पास जाओ। हजरत मूसा उसके पास पहुंचे, सोच रहे थे कि कोई बहुत बड़ा आबिद इबादत गुजार होगा, जाकर देखा वो शख्स जुजाम का मरीज था, कोड़ी का मरीज था। हजरत मूसा ने देखा अजीब कैफियत है इसकी, उसके पास बैठ गए, आंखों की रोशनी नहीं थी उसकी, अपनी जबान पर एक जुमला था या बार या वसूल, खुदा को याद कर रहा था। थोड़ी देर बाद हजरत मूसा के सामने खुदा ने एक और चीज करके दिखाई, उस शख्स की आंख का ढीला बाहर की तरफ लटक गया। जैसे ही उसकी आंख का ढीला बाहर आया उसने खुदा वंदे आलम से कहा परवरदिगार तेरा शुक्र अदा करता हूं, जब तक तूने चाहा मेरी आंख में रोशनी देकर इस दुनिया को मेरे लिए रोशन रखा, जब तूने चाहा मुझसे ये नेमत को ले लिया, मैं राजी हूं। हजरत मूसा आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद उससे कहा कि देखो मैं मुस्तजाब दावा हूं, मेरी दुआ कबूल हो जाती है, चाहो तो मैं तुम्हारी इस कैफियत को पलटा दूं। उस शख्स को मालूम नहीं था नबी खुदा है, फकत हजरत मूसा ने कहा मुस्तजाब दावा हूं, उसने कहा कि नहीं, खुदा बंदे आलम ने मुझे जो कुछ अता किया मैं उस पर राजी हूं, मैंने जो कुछ हासिल किया बगैर मांगे हासिल किया, मैं क्यों अपने आप को राजी ना करूं जब खुदा ने मुझसे एक नेमत को लिया है। खुदा फकत दिखाना चाहता था हजरत मूसा को, तवज्जो कीजिएगा, बस आंखों की रोशनी अगर चली जाए और वो शख्स खुदा की बारगाह में शुक्र अदा करता रहे, खुदा उसे क्या करार देता है, मकाम रजा अता करता है। हजरत मूसा जैसे नबी को भेजकर कहता है कि ये वो शख्स है जिससे मैं राजी हूं, ये मुझसे राजी है, ये मेरा महबूब बंदा है, जिसने अपनी आंखों के नूर को खुदा की खातिर कुर्बान किया हो उसका क्या मकाम होगा, जिसने अपने जिगर पारों को खुदा की राह में कुर्बान किया हो
उसका खुदा की बारगाह में क्या मकाम होगा, क्या मंजिल होगी। इसीलिए अजीजा ने मोहतरम, जो मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है वो अंबिया और औलिया खुदा में मकाम मुमताज मकाम है। मकाम अजीब मकाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए यह बयान किया गया रिवायात में, हर किसी की जियारत की अहमियत है, फजीलत है, लेकिन फकत इमाम हुसैन वो हैं कि जाहिर इमाम हुसैन की अजमत व इज्जत व रफत है कि रिवायात के मुताबिक अपने घर से कदम निकालता है, खुदा उसके गुनाहों की बख्शिश की नबीद सुना। हर किसी की अपनी अहमियत है, यकीनन हर कोई साहिब मकाम है, मगर वो गुम्बद के जिसके नीचे दुआ की कबूलियत की जमानत दी गई है वो फकत इमाम हुसैन का वो। ऐसे ही ना, दुनिया की किसी भी जगह की मट्टी उठा लीजिए नहीं खा सकते आप, नजफ की उठा लीजिए नहीं खा सकते, मदीना की उठा लें तबरुकन रख सकते हैं चख नहीं सकते। ऐसे ही है, फकत खाक शिफा है कि जिसके अंदर खुदा ने अमराज की शिफा रखी। मकाम इमाम हुसैन सल्लम का क्यों? क्योंकि मकाम इमाम हुसैन बहुत बुलंद है, रजा की मंजिल पर है इमाम हुसैन। बस अजीजों, वक्त है इमाम हुसैन सल्लम के ऊपर करबला के अंदर कि इमाम हुसैन इसी चीज को बयान कर रहे हैं। जब रवाना हो रहे हैं मक्के से तो इमाम इसी रजा की मंजिल की खबर दे रहे हैं। जनाब उम्मे सलमा आगे बढ़कर कहती हैं, मेरे लाल मुझे तुम्हारे जाने से खौफ महसूस हो रहा है, मैं चाहती हूं तुम ना जाओ। इमाम हुसैन क्या जुमले कहते हैं? रजायत इलाही के जुमले, इन्नल्लाह कद शाअ यरानी क़तीला, नानी अम्मा खुदा मुझे मक़तूल देखना चाहते। अच्छा बेटे जा रहे हो तो बहनों को साथ लेके ना जाओ, ख़वातीन को साथ लेके ना जाओ। फिर इमाम का जुमला, इन्नल्लाह कद शाअ यराहुम नसबाया, नानी अम्मा खुदा इनको असीर देखना चाहता है। खुदा की रजा पे हुसैन राजी है, खुदा चाहता है ये सब हो ताकि दीन बच जाए, ताकि दीन इस्लाम हमेशा के लिए बाकी रहे। बस अब हुसैन अपने अली अकबर को कुर्बान करने पर राजी है, अब इमाम हुसैन अपने हाथों पर अली असगर को कुर्बान करने पर तैयार। अली असगर का कुर्बान होना कोई मामूली नहीं है अजीजों, 6 माह का छोटा सा बच्चा है जो मैदान जंग में लड़ने की नियत से नहीं आया, मैदान जंग में इसलिए अपने बाबा के हाथों पर लाया गया है कि छोटे से उसके गले के लिए चंद घूंट पानी की जरूरत है, मगर दुश्मन ने अली असगर को पानी ना दिया। काश ये लश्कर ऐसे ही वापस पलटा देता, हुसैन से कहता हुसैन अब पानी नहीं देंगे, अपने बच्चे को यहां से ले जाओ, मगर अफसोस तो यह कि उस बच्चे को तीर से ज़बह किया गया। तीर भी कौन सा तीर से शोभा जो बड़ी चीजों के हलाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, निशाना लगाया जाता था। बस अजीजों, इमाम हुसैन रजा की मंजिल पर हैं। वो मंजिल आ गई इमाम हुसैन की के खेमों में आए, आवाज दिया, ज़ैनब हो गया, कुलसुम हो गया, रुकिया अलैकुम ना मिन्नी अस्सलाम, ऐ बीबी और हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। एक बाप इस दुनिया से गया, उसके चेहरे के लिए उसके लवाहिकीन ने साले सवाब की मजलिस रखी है। मैं इन मरहूम जनाब यावर अब्बास के लवाहिकीन से, बेटों से और जो भी उनके लवाहिकीन उनसे ये अर्ज करूंगा कि देखो आज चेहलों का दिन है, तुम्हारे बाबा के चाहने वाले न मालूम कहां कहां से तुम्हारे साथ हमदर्दी करने के लिए यहां जमा हुए, तुम्हारे बाबा की याद में यहां जमा हुए हैं, उनके साले सवाब के लिए जमा हुए हैं। यकीनन मजलिस से पहले भी अपने गले से लगाया होगा, मजलिस के बाद भी अजीज तुम्हें गले से लगाएंगे, दिलासा देंगे, लेकिन सैयद सज्जाद के बारे में जरा सोचना, जरा ये सोचना कि 40वें दिन अहले बैत अलैहिस्सलाम का कहां गुजर रहा है, जरा ये सोचना कि हुसैन की यतीमा थी उसके साथ किस तरह से ले पेश आ रहे थे, 40 दिन का सफर इस बच्चे ने कैसे गुजारा है, मुसलसल तमाचे हैं, मुसलसल ताजियाने हैं, मुसलसल झिड़कियां हैं। तुम्हारी मुलाकात महशर में होगी। रिवायत में जा भी नकल करता, मैं देखता हूँ खेमे का पर्दा उठता था, देख भी जाता था, बीबी हुसैन को घेर कर खड़ी हो जाती थी, सामने
اگر ادم اللہ میرا مولا بیویوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے باہر نکلا استعد دلیل بلا، اے میرے گھر والوں، اہل بیت کے ماننے والوں، اہل بیت والوں، بس اپنے آپ کو بلاؤں مصیبتوں کے لیے راضی کر لو، آمادہ ہو جا، اپنے مصیبتوں کے لیے آمادہ ہو جا۔ میرا مولا کیا کرنے کے لیے عزیزوں میں مرحلہ آیا، میرا مولا باہر نکلا، سواری پر سوار ہوا، اپنے رسم بارتا کو ہیر لگا، یہ سواری آگے بڑھنے سے انکاری ہے۔ میرے مولا کے جملے مشہور ہے، آپ عزاداروں نے ہمیشہ سماعت فرمایا ہے، میرے مولا نے مخاطب ہو کر کہا ہے، اسم باوفا مجھے معلوم ہے تو تھک چکا ہے، شہباز حسین کا ساتھ دے رہا ہے، ارے کبھی علی اکبر کی لاش لینے ساتھ گیا، کبھی عباس کے بازو اٹھانے، صبح سے میدان میں حسین کے ساتھ ہے، بس یہ آخری چند لمحوں کی زحمت اور ہے۔ مقتل میں ایسے بیان ہوا گویا سواری نے اشارہ کیا، مولا انکار مجھ ہو نہیں ہے، ارے کسی بچی نے میرے قدموں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کسی کی محبت کی زنجیر میری رکاوٹ بن گئی ہے، بڑا مولا زمین پر اترا، اپنی چھوٹی سی بچی کو آغوش میں بٹھایا، بچی نے روتے ہوئے بابا سے کہا، بابا آیا موت کے لیے خود کو آمادہ کر لیا ہے؟ میرے مولا کا درد بھرا جملہ تھا، ارے جس کے اعصاب قربان ہو گئے ہیں، جس کا قبر قربان ہو گیا ہے، جس کا دست بازی عباس نہ بچا ہے، اس امید کی آبادگی کے ہم کیا کرے گا؟ بس یہی وہ بچی نے بابا سے کہا، بابا اگر جاتے ہیں کم از کم ہمیں نانا کے مدینے کی طرف راہ کے رہی کر دیجیے۔ میرا مولا کہتا ہے، میری لخت جگر اپنے رونے سے میرے جگر کو مزید چھلنی نہ کر، ارے تیرا رونا طویل ہے، اپنے بابا کے سامنے رو رو کر میرے جگر کو مزید چھلنی نہ کر۔ اجر کمل اللہ، بس عزیز سکینہ کو امام حسین نے نصیحت کی، وصیت کی، بیٹا یتیمی کا مرحلہ آ گیا، اپنے آپ کو یتیمی کے لیے آمادہ کر لے۔ بس عجب نہیں کہ سکینہ کا ذہن اس مرحلے پر منقلب ہوا ہو کہ منتقل ہوا ہو جب مسلم کی خبر شہادت آئی تھی، امام حسین نے قافلے کو روک لیا تھا، مسلم کی یتیمہ کو بلایا تھا، اپنے سامنے بٹھا کر سر میں دست شفقت لے رہا تھا، سکینہ منظر دیکھنے رہی، بابا اس موقع پہ یہ نئے نوازش کیوں کی جا رہی ہے؟ بابا اس موقع پر یتیمہ مسلم کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرے مولا نے کہا تھا، بیٹا یہ یتیم ہو گئی ہے، ارے جب کوئی یتیم ہو جائے اس سے محبت سے پیش آیا جاتا ہے، اس کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے، عجب نہیں معصوم ذہن نے ایک نقش بنا لیا ہو، اچھا یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آیا جاتا ہے۔ اب جب حسین نے کہا ہوگا سکینہ یتیمی کا مرحلہ آ رہا ہے، کربلا کے تن میں آواز گونجی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا، حسین کو کربلا میں مارا گیا۔ ارے یہ بچی اب سوچتی ہوگی میں یتیم ہو گئی ہوں، آنے والے آ کر مجھے دلاسا دیں گے، میں تاریخ نے عجب منظر دکھایا، آنے والے آئے، کسی نے بچی کو تماچا مارا، کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے کانوں سے گوشواروں کو چھینا، ارے دامن میں آگ لگی، یہ بچی کربلا کے بن میں،
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين، اللهم لعنهم ولا ظالمين، ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعنهم جميعا۔ پروردگار اس مجلس سے بہترین اجر مرحوم سید یاور عباس رضوی ابن سید آفتاب حسین رضوی کی روح کو اسال فرما، مرحوم کی برزخ کی منازل کو آسان فرما، ان کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کی قبر کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما۔ پروردگار ان مرحوم کو جو میں حاضر میں موجود مومنین کے تمام مرحوم مومنین و مومنات اور ہم سب کو مرنے کے بعد جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما،
خداوند تیری رحمت کے واسطے جب تک اس دنیا میں ہے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. پروردگار اسی ولایت علی کے سائے میں زندگی گزارنے، اس کی حفاظت کرنے، اس کا پرچار کرنے کی توفیق عنایت فرما. تجھے تیری رحمت کا واسطہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. دنیا بھر کے مظلوموں، مخصوصا فلسطین کے مظلوموں کی نصرت فرما. اپنے آخری حجت کے ذریعے سے اس دنیا کو امن و عدل و انصاف کے گہوارے میں تبدیل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.